आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले में कानपुर के युवक समेत देश के कई राज्यों से पहुंचे पर्यटक हताहत हुए हैं। पूरे देश में सतर्कता बढ़ाई गई। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित किए। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों की मदद से धार्मिक शहरों की यात्रा कराएगी। इसके लिए 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया है। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में कल दोपहर अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में अज्ञात आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया। इस हमले में कानपुर के एक युवक समेत देश भर के कई राज्यों से पहुंचे पर्यटकों के हताहत होने की खबर है। यह हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हताहतों की संख्या का पता लगाया जा रहा है और स्थिति स्पष्ट होने पर आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद कल श्रीनगर में स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन से हालात की जानकारी ली और सऊदी अरब की अपनी राजकीय यात्रा रोककर देश के लिए रवाना हो गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की देश दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने निंदा की है और दुख जताया है। इस हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के मथुरा जिले के प्रमुख मंदिरों समेत सभी तीर्थस्थलों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम कल घोषित कर दिए। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि सहारनपुर की कोमल पुनिया ने छठवां और कन्नौज के रहने वाले मयंक त्रिपाठी ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। शक्ति दुबे के पिता देवेंद्र दुबे और उनकी मां ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उन्हें बेटी की कामयाबी पर गर्व है।
मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक SMC घोरपुर से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc टॉप की और गोल्ड मेडलिस्ट है। और इसके बाद से MSc BHU से की, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। इसके बाद लगन से पढ़ाई कर रही थी और करने का प्रतिफल है और मेहनत का कि यहाँ तक पहुँची।
बहुत अच्छा लगा।
सिविल सेवा परीक्षा में मिर्जापुर में तैनात SDM सौम्या मिश्रा ने 18वां स्थान प्राप्त किया है। जौनपुर के अभिषेक सिंह ने 78वीं रैंक पाई है। हापुड़ के विवेक गर्ग ने 114वीं और कुशीनगर के आकाश राय ने 339वीं रैंक हासिल की है। पीलीभीत के यथार्थ दीक्षित ने 411वां स्थान पाया है। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल अयोध्या में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक गोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहब के एक एक स्वप्न को साकार करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले लखनऊ के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की क्षेत्रीय कार्यशाला का भी कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के मुसलमानों की भलाई के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
तो इस देश के इतिहास में संसद के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों में से एक है, देश के 90% मुसलमानों की भलाई के लिए है। जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, वह भी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करें रास्ता दिखाने वाला यह बिल है।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर कल संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संसद भवन में हुई। 39 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पूरे देश की आवश्यकता है।
आजादी के समय से 52, 57, 62, 67 में एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव हुए भी थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। उसके कारण आचार संहिता लगने के कारण समय बहुत बर्बाद होता है, बीच बीच में अलग अलग मतदाता सूची हैं, उनके पुनरीक्षण का काम चलता है। भारत ऐसा देश है जहां प्रतिवर्ष कोई ना कोई चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है, तो बहुत अच्छी पहल है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं।
केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कल महाराजगंज जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में बार बार चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों से धार्मिक शहरों की यात्रा कराएगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
धर्म नगरी काशी, तीर्थराज प्रयागराज, रामलला की जन्मस्थली अयोध्या और सोनभद्र का सफर इलेक्ट्रिक एसी बसों से होगा। इसे देखते हुए सरकार वाराणसी और सोनभद्र में चार्जिंग स्टेशन बनवा रही है। सरकार की इस पहल से सुगम यात्रा के साथ ही पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया है कि प्रयागराज रीजन और अयोध्या रीजन से वाराणसी और सोनभद्र के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रस्तावित है। इसके लिए 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
भारी बारिश और तूफान जनित जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के 10 प्रमुख शहरों में विस्तृत ड्रेनेज एक्शन प्लान के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। लखनऊ, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, गाजियाबाद और मेरठ में इस एक्शन प्लान के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है तथा प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की तैयारी है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कल मेरठ जिले के मेरठ कॉलेज में वार्षिक पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री बघेल ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा समान होनी चाहिए, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति के जरिए किए गए बड़े बदलावों के बारे में भी चर्चा की।
मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन तमाम खामियों को पूरा करने का प्रयास किया है कि शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक हो और रोजगार पूर्वक हो और व्यक्तित्व निर्माण में उसका योगदान रहे।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कल 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने अर्जुन बांध परियोजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत सलैया नाथुपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के इंटेक वेल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना वरदान साबित होगी। पहले जहां ट्रेन से पानी आता था, वहां अब हर गांव में नलों से पानी पहुंच रहा है। IPL के तहत कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने एडेन मार्करम के अर्धशतक 52 रनों के दम पर 159 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाकर मैच जीत लिया। दिल्ली के लिए KL राहुल ने नाबाद 57 जबकि पोरेल ने 51 रनों की पारी खेली। कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड के 4 वर्ष बाद 30 जून से फिर से शुरू होने जा रही है। यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर चीन में प्रवेश करने के लिए पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर आगे बढ़ेगी। 22 दिन की इस श्रम साध्य आध्यात्मिक यात्रा पर कुल 250 तीर्थयात्री जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले में कानपुर के युवक समेत देश के कई राज्यों से पहुंचे पर्यटक हताहत हुए हैं। पूरे देश में सतर्कता बढ़ाई गई। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित किए। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों की मदद से धार्मिक शहरों की यात्रा कराएगी। इसके लिए 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।